हर किसी ने अपनी जिंदगी में खुशी और तलखी, खूबसूरती और बदी देखी है और इससे मुतालिक कुछ यादें रखते हैं। मैंने अपने मुताबिक इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यतीमी, गुर्बत, सफर, दोस्तों से दूरी, तंगदस्ती और दूसरी परेशानियों के साथ गुजारा है। जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज का सामना किया है और जिंदगी के रंगों को देखा है, लेकिन मैं हमेशा यह महसूस किया करता था कि कोई गैबी ताकत है जो मुझे हमेशा हर खतरनाक घड़ी से निजात दे रही है, नेज ये कि कोई खुफिया कशिश है जो मुझे हजारों रुकावटों से बाहर खींच लेती है और मकसद की तरफ हिदायत कर रही है। मैं अगर खार हूं या फूल, कोई चमन को सजाने वाला है कि जो चीज हाथ से लगाई है वही उगती है।
उस हालत में कौम आए कि जब हम कुम पहुंचे तो कुछ भी साथ ना लाए थे, बिल्कुल खाली हाथ आए थे, क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी हाकिम हो चुकी थी और वो किसी को कोई चीज नहीं ले जाने देते थे।
जब वो यहाँ आए तो किराए पर रहते थे।
हम आकाए काजी के, जो के तबरेज के पहले इमाम जुमा हमदली काजी के मेहमान बने जो शहीद कर दिए गए थे।
शुरू में जब आए तो यखशाल काजी में एक घर किराए पर लिया।
दो कमरे हमारे लिए किराए पर लिए। इन दो कमरों के दरमियान पर्दा लगा हुआ था, उसका दरवाजा भी नहीं था।
इमाम के घर के बिल्कुल सामने
यहाँ हमने रिहाइश इख्तियार की।
अल्लामा ताबाताबाई काफी अरसे तक बहुत तंगदस्ती में रहे हैं।
जाहिरी हालत बता रही थी कि जिस तरह का वो लिबास पहनते थे, यकीन करें बस औकात मुझे बहुत रोना आता था।
टूटे हुए किराए के घर रोजमर्रा के अखराजात के एतबार से हत्ता मकरूस थे। मसलन
ऐसे कपड़े होते थे कि शायद उसे दूसरे लोग भी पहनना पसंद नहीं करें, ऐसा लिबास होता था उनका।
अल्लामा मोहतरम काजी खानदान से थे। वो काजी खानदान के चंद साल तक वहाँ के बड़े उलमा इसी खानदान से थे। इनका अपना घराना भी काजी खानदान से था। अल्लामा आकाजादे थे, इनके साथ एक बेहतर सलूक होना चाहिए था। एक चाय से ज्यादा हमें नहीं दे सकते थे, वो भी शायद मुश्किल से।
एक तालिब इल्म की जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं रस्म व रिवायत हो वो हरगिज ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता।
उनके लिए जिस शख्सियत का किरदार सबसे अहम था उनकी जौजा थी, यानी हमारी वालदा।
इंतहाई जाहिदाना जिंदगी थी उनकी।
जब हम तबरेज में थे वहां हमारी वालदा पुरासाइश जिंदगी में थी। एक घर था जिसमें तीन सहन थे, 20 कमरे थे। एक जगह घोड़ों के लिए मखसूस थी, चंद एक घोड़े थे, एक गाय भी रखी हुई थी, दो नौकर और दो नौकरानियां। खाना पीना वाफिर था, मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा था और बड़ी बड़ी दावतें थीं। एक बड़ा हॉल था, अच्छी खासी अशराफी जिंदगी थी।
दोस्तों को ये बात मालूम हो गई थी कि एक अरसे तक उनके पास कुछ भी ना था, मकरूज भी थे और किसी से इजहार भी नहीं करते थे।
मेरी वालदा भी किसी रईस की बेटी थी। वो घुड़सवारी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जब हम बच्चे थे वो घोड़े पर सवार होती तो हम इन्हें पकड़ नहीं सकते थे। बहुत समझदार और होशियार थी। इनके भाई मालदार और अरबाब थे।
कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन एक अजीब तवक्कल था।
वालदा ने उस जिंदगी को सिर्फ अपने शौहर की कुम आने की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया और शौहर और अपने बच्चों के हमरा कुम आ गई।
दोस्तों से कहा करते थे कि तबरेज में हमारे पास एक अपना एक जाती घर भी था जिसमें हमारे परिंदे भी रहते थे, और वो घर इस घर से भी बड़ा था। बिल्कुल।
बेचारी हमारी वालदा ने 20 कमरे वाले घर, नौकर चाकर, और हर तरह की सहूलत को छोड़ दिया था। उस छोटे से घर में आ गईं जहां उनके शौहर और बच्चे थे, जहां सिर्फ दो कमरे थे।
जब तक औरत अपने शौहर से हमदर्दी और मोहब्बत करने वाली ना हो, वो जिंदगी आराम से खाली होती है। शौहर बेसुकून रहता है और घर के तमाम उमूर को चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
वो खुद को अपने शौहर की जात में तलाश किया करती थी।
मुझे याद पड़ता है कि एक मर्तबा रोज़े आशूरा था, कुम में उस मरहूमा ने अपने घर ज़ियारत आशूरा पढ़नी शुरू की। जब वो ज़ियारत आशूरा पढ़ रही थीं, उनके जहन में ख्याल आया कि क्या ही अच्छे दिन थे। तौफीक इलाही हासिल थी जब हम उन अय्याम में नजफ में हुआ करते थे। वहां हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का हरम था। हम ज़ियारत के लिए हरम शरीफ जाया करते थे। इसी दौरान उन्होंने ये देखा कि वो हरम मौला में खड़ी हैं और ज़ियारत तो दुआ पढ़ने में मशगूल हैं। फिर जब तसव्वुर से वापस आई तो देखा कि अपने ही घर में मौजूद हैं। इस बात को अल्लामा ने नकल किया था।
उन्होंने अपने शौहर को कबूल कर रखा था और उनकी मुश्किलात को तहम्मुल कर रही थी।
अल्लामा की जौजा उनसे बहुत मोहब्बत करती थीं। अल्लामा ने मरहूम मुतहरी से फरमाया था कि अगर ये ना होती तो मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था।
मुझसे कहा, मैंने कई मरतबा जिंदगी को तरतीब दिया है और वो जिंदगी अमली तौर पर तबाह हो गई। इसके बावजूद वो अपने शौहर के हमरा बहुत खुश थी और जिंदगी गुजार रही थी।
एक मरतबा मैं अल्लामा की खिदमत में गया, एक सवाल पूछना चाहता था। अक्सर हम जाया करते थे, कभी हमें ये एहसास भी होता था कि अल्लामा बहुत मसरूफ हैं। इसी वजह से अल्लामा दरवाजे तक खुद तशरीफ लाते और हम दरवाजे पर ही अपनी बात करते। अल्लामा हाथ पर बोसा देने की इजाजत नहीं देते थे। एक मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि उनकी जौजा मोहतरमा दरवाजे की तरफ आ रही हैं, कदीम तर्ज हिजाब के साथ। मैं एक तरफ हो गया और एक अजीम बुजुर्गी को देखा, हकीकत में इंतहा दर्जे की अजमत और बुजुर्गी।
दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत रखते थे, एक दोस्त की तरह थे और उनकी दोस्ती बहुत बुनियादी और मजबूत थी।
अल्लामा फरमाते थे कि नहीं मालूम वो कब सोती थी, हमेशा मेरी तरफ मुतवज्जा रहती थी। जब कभी आधी रात के वक्त में मुताला कर रहा होता था और मुझे नींद का झटका लगता तो नहीं मालूम खानम कहां से देख रही होती थी, अचानक आ जाती और उनके हाथ में मेरे लिए चाय का एक कप होता था। फिर कुछ बातें करती तो मेरी नींद उड़ जाती और मैं फिर से मुताला करने में मशगूल हो जाता।
दोनों में दोस्ती थी, इससे अलावा के मियां बीवी थे, एक दूसरे के दोस्त थे।
वजाला बैनकुम मवद्दता व रहमत है, असल बात ये है।
आखिर उम्र तक यूं ही थे, खुद को शौहर में जुस्तजू करती थी।
अल्लामा तबा तबाई की जौजा की मजलिस खत्म में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा तो सामने ऊपर एक जगह थी। मैंने चाहा कि वहां बैठ जाऊं। सैयद हुसैन आका काजी ने मुझे बुलाया, आवाज दी और कहने लगे यहां बैठ जाओ। पूछा, क्या आप उनकी खानम को जानते थे? मैंने कहा नहीं, जिस तरह आप घर वालों की तरह जानते हैं। फरमाया कि वो मदरसा हसन बादशाह इस खातून की जद हैं।
उन्होंने मुझसे कहा, मेरी मौत के बाद फला खानम जिन्हें हम जानते थे कि इनके शोहर नहीं थे के साथ अपने बाप का निकाह करवा देना, जबकि खवातीन इस तरह की नसीहत नहीं करती, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनका शोहर किसी और औरत से शादी करे। लेकिन उन्होंने कहा, मेरी मौत के बाद फला खानम से अपने वालिद की शादी करवा देना। मैंने वालिद से कहा, ये कैसी बातें हैं, ये क्या मरने की बातें कर रही हैं, कौन जानता है कि किसने कब मरना है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे बता दिया है। मैंने पूछा, क्या बताया है? कहा, बताया है कि मैं पहले दुनिया से जाऊंगी। फिर ऐसा ही हुआ। वालदा सन 1344 में फौत हुई और वालिद सन 1360 में दुनिया से गए।
मरहूम मुताहरी ने देखा कि मरहूमा के ताबूत के पीछे पीछे अल्लामा एक बच्चे की तरह रो रहे हैं, जैसे उनकी माँ इस दुनिया से चली गई हों। इस तरह की कैफियत थी। उन्होंने कहा, आका जान, लोग देख रहे हैं, आप अपनी जौजा के जनाजे के पीछे पीछे इस तरह फरमाया। आका मुताहरी, मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे पढ़ने लिखने के सिवा और कोई भी काम नहीं आता, घर का बाहर का कुछ भी। मफहूम यह है, बिल्कुल यही अल्फाज नहीं थे। अगर उनकी मावनत ना होती तो मैं जिंदगी को नहीं चला सकता था। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं और उन्हीं की मदद से है ये सब कुछ।
अल्लामा जिंदगी के तमाम उमूर पर निगरानी रखते थे, लेकिन बच्चों की तरबियत को हमारी वालदा के जिम्मे कर रखा था। बच्चों की तरबियत और घर के अंदरूनी मामलात हर हवाले से हमारी वालदा के जिम्मे थे। वो भी अच्छी खानादार औरत थी। ना सिर्फ हमें जिंदगी और शोहर को संभाल रखा था, बल्कि मोहल्ले की बास खवातीन भी इनसे रबते में थी और वो घर से बाहर भी काफी खिदमात अंजाम देती।
जैसा कि मुझे मालूम है, अल्लामा उनसे बहुत मानूस थे। वो अक्सर उनकी कब्र पर जाया करते थे।
काफी अरसे तक हर रोज फातह के लिए जाया करते थे।
नहीं हो सकता था, अल्लामा एक लतीफ मिजाज रखने वाले शख्स थे। अल्लामा तबा ताबाई जिस किसी के साथ भी राब्ता रखते थे, हत्ता कि अपने शागिर्दों के साथ भी खास तरह की उल्फत रखते थे। इजहार नहीं करते थे इसका, लेकिन वो ऐसे ही थे।
जब रात हमारी वालदा फौत हुई, हमें बाद में पता चला कि इस रात वो मुसलसल कमरे में चलती रहीं और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करती रहीं। मुसलसल जिक्र कर रही थी। हम भी हैरान थे कि वो ये काम क्यों कर रही हैं। उनके फौत होने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो पहले से जानती थीं कि आज रात क्या वाकया पेश आने वाला है। 20 फरवरी सन 1344 को अपने रब से मुलाकात के लिए चली गई।
मेरी इनसे आशनाई यूं हुई कि तकरीबन 60 साल पहले वो अक्सर तहरान आया जाया करते थे। मेरे वालिद के साथ इनकी दोस्ती थी। वो एक ऐसे इंसान थे कि यूरोप से भी लोग आया करते थे ताकि इनसे मुलाकात करें। वो भी उम्दा तबीयत के मालिक थे। जो कोई भी इनसे एक दफा मिलता, दीगरान और इसके लिए एक उसवा था। बहुत मतीन थे।
बहुत ज्यादा मतीन थे।
अल्लामा तबातबाई ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत और अमली जिंदगी के बारे में मुताला और तहकीक इब्तदाई जवानी से ही शुरू कर दी थी। इस बारे में इनकी इब्तदाई याददाश्त मुकद्दस शहर नजफ में तालीम हासिल करने के जमाने से मुताल्लिक है। वो इन मकतूबात को अपनी जिंदगी के लिए एक रोशन दस्तूरुल अमल शुमार करते थे। अल्लामा उल्मा का रूहानी लिबास पहनने के बाद पैगंबराना तर्ज अमल अपनाने की कोशिश कर रहे थे और इस दस्तूर पर अमल करके बुलंद पाया रास्ते को तय कर रहे थे। मुकद्दस शहर कुम में उनकी रिहाइश के बाद यही पराकंदा मकतूबात को जमा किया गया और नजरसानी के बाद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उन्वान से एक किताब मरतब हुई।
एक मर्तबा मैं अल्लामा के हमरा इनके घर जा रहा था। इनका एक हादिम था जो कदीम वक्त से इनके पास था। शायद इर्स में इन्हें मिला था। उन्होंने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाजे पर आया और बोला, क्या मसला है, आप होश में तो हैं? उन्होंने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मुझसे कहा, देखो इसे, देखो ये मेरा खादिम है और मुझसे किस तरह से बात कर रहा है।
उनकी एक किताब है बनाम सुननुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम की सुन्नतें, यानी वो चीज़ें जो मुस्तहब हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का लिबास ज़ेब-तन फरमाते थे, खाना किस तरह खाते थे, किस किस्म का खाना तनावुल फरमाते थे, लोगों के साथ मेल जोल कैसा था, नज़ाफ़त में कैसे थे, पैगंबर इस्लाम जो दुआएं पढ़ा करते थे वो दुआएं क्या थीं। इस किताब के मुख्तलिफ बाब हैं।
अल्लामा तबातबाई बहुत मुतवाज़े थे, बहुत। लिबास के एतबार से छोटा अमामा पहनते थे।
हदीस में है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तकरीबन 2.5 मीटर का अमामा सर मुबारक पर पहना करते थे। अल्लामा तबातबाई भी इसी किस्म का अमामा पहना करते थे।
अल्लामा की शख्सियत और उनकी रूहानी अजमत इंसान को मरूब कर देती थी।
जब हम अल्लामा को देखते थे तो अपने अंदर तमानियत महसूस करते थे।
वो सादा तरीन लिबास पहना करते थे।
कुछ बातें ऐसी हैं अगर इंसान कह दे तो मुमकिन है मुबालगा तसव्वुर किया जाए, लेकिन यहाँ मुबालगे का इम्कान नहीं। आका तबातबाई को सब ने देखा है।
वो जो कबा पहना करते थे उसे देखकर मालूम होता था कि उसे किसी माहिर दर्जी ने बिल्कुल भी नहीं सिया है, बल्कि किसी मामूली दर्जी ने सिया है।
इसलिए कि वो जब नजफ में थे सैर व सुलूक की मनाजिल तय कर रहे थे। अल्लामा तबातबाई के साथ और भी कई उलमा राबते में थे। मसलन आकाए अली काजी अल्लामा के साथ राबते में थे।
लोगों के और अपने दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आज तक ये बात अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी उन्हें नया लिबास पहने हुए नहीं देखा।
जबकि उनका उठना बैठना, मुस्कुराना, बात करना, जवाब देना, सुनना, देखना, ये सब कुछ इंसान को रूहानी बुलंदियों पर ले जाता था।
आज कई लोग ऐसे हैं, मैं नाउज़ बिल्ला ये नहीं कहना चाहता कि ये खिलाफ शरा है या नहीं, जो साफ सुथरा काबिल दीद और नया लिबास पहनते हैं। बाज उलमा ऐसी अबा भी पहनते हैं कि जिसे खाकी कबा कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कीमती अबा है। अल्लामा एक सादा सी और मामूली सी अबा पहना करते थे।
वो हमेशा सर नीचे रखते थे। और वो अफराद की तरफ बहुत कम नज़र उठाकर देखते थे, इसलिए कि कहीं उन लोगों को हिचकिचाहट ना हो। आगाए तबातबाई बहुत खास सिफात के हामिल थे।
आम तौर पर अल्लामा ऐसे थे, मैं नहीं कहते थे, मेरी बात, मेरा घर वगैरह नहीं कहते थे। जहां कहीं जरूरी होता और उसके अलावा कोई चारा नहीं होता था कि कहें, तो खुद को सिर्फ बंदे इलाही कहा करते थे।
इनकी जात में तकब्बुर की बू तक ना थी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बातचीत में किसी तरह का जदल और सख्त गुफ्तगू ना हुआ करती थी।
मस्जिद खुहा में दर्स दे रहे थे और मौसम सरमा की सख्त सर्दी थी। एक तालिब इल्म गया और कंबल लाया और उनके बैठने की जगह पर बिछा दिया। उन्होंने कहा, इसे उठा लो। उसने इसरार किया लेकिन फरमाया, नहीं, अपने बारे में किसी इम्तियाज के कायल नहीं थे कि मैं उस्ताद हूं। हमने देखा है, असाहीद को देखा है, दूसरों को भी देखा है, वो मुबमू सुनन नबी पर अमल करते थे।
खुलासा यह है कि अल्लामा तबातबाई एक नेक और हकीकी इंसान का नमूना थे।
बकौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुआए अरफा में फरमाते हैं, ऐ खुदा, जो कोई भी तुझे याद नहीं रखता है उसके पास क्या है और क्या कुछ नहीं है, और जो कोई भी तुझे याद रखता है उसके पास किस चीज की कमी है।
मैंने ज्यादातर देखा है कि अल्लामा तबातबाई तफक्कुर की हालत में होते थे।
सुन्नत पैगंबर इस्लाम में से है कि किसी के सामने टेक लगाकर नहीं बैठा करते थे, जैसे मैं यहां टेक लगाए हुए हूं। अगर कोई शख्स भी नबी मुकर्रम के पास होता तो आप सरकार टेक नहीं लगाते थे। इसी तरह तारीख में है कि इमाम रजा भी किसी के सामने टेक लगाकर नहीं बैठते थे। यकीनन दीगर उलमा भी सुन्नत पैगंबर अकरम पर अमल करते होंगे। आप अल्लामा के सारे शागिर्दों से पूछें, देखें कि क्या कोई कहता है कि अल्लामा ने मेरी मौजूदगी में दीवार के साथ टेक लगा रखी थी। जब कभी हम उनके घर जाते या वो दर्श के लिए तशरीफ लाते, हमने देखा कि वो टेक लगाकर नहीं बैठते थे।
मरहूम आका तबातबाई की दिल नशीन बातों में से एक ये थी कि रात सोने से पहले कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत किया करते थे। कुरान मजीद खोलकर सामने रख लेते और रूखवानी किया करते थे, ताकि कुरान करीम की नूरानियत के साथ नींद आए।
जब हम उनकी खिदमत में होते थे, हम देखते थे कि हर वो बात जो सुनन नबी में मौजूद थी और हर वो बात जो सुनन नबी में मौजूद है, अल्लामा इस पर अमल पैरा थे।
अल्लामा तबातबाई का चेहरा ही एक नजीब चेहरा था। इनका चेहरा हमारे लिए ताज्जुब आवर था, वो मलकूती चेहरा था।
हमारा ख्याल है कि हमने इस्लाम को जान लिया है। नहीं नहीं, हम इस्लाम से बहुत दूर हैं, बहुत दूर फासले पर हैं। एक शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए इस्लाम को बयान करें। उन्होंने कहा कि ही हाथ, मैं कहां और इस्लाम कहां। इस्लाम ला यमस्सहु इल्ला मुतहरून। ये थे अल्लामा।
आज तक आजाद फिक्र अल्लामा तबातबाई से ज्यादा मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
लोगों के और अपने दरमियान किसी भी किस्म के फर्क के कायल न थे। मुझे आज तक ये बात अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी उन्हें नया लिबास पहने हुए नहीं देखा।
अगर आप उन्हें कभी नमाज पढ़ते हुए देख लेते تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔